वो मासूम बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जिसके बाप का इंतकाल हो चुका है, यतीम बच्चा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ़ युतीका रब्बुका फ़तर्दा, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। क्या हमने आपको यतीम न पाया और फिर जगह दी? ये मासूम सा बच्चा जिसके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी बाड़ नहीं थी कि ये फूल अपनी जवानी तक पहुंचता, लेकिन अल्लाह ने इस तरह से लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत रखी कि दादा ने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। प्यार और मोहब्बत से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जो अल्लाह के नबी का नाम सुने और आप पर दुरूद ना भेजे, अल्लाह ताला के नबी की बददुआ है उसके लिए। फिर उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता गया। पहले माँ की मोहब्बत मिली। उम्मे अमन जो ख़ानदानी लौंडी थी, उन्होंने आपकी खिदमत की। हलीमा सादिया, उनके पास आप पहुँचा दिए गए। 6 साल तक उस औरत ने आपकी खिदमत की। पहले आपको दूध पिलाया, फिर आपको लोरियाँ दी, और नतीजा क्या निकला कि अल्लाह का नबी एक खूबसूरत सेहतमंद बच्चा बनकर पला। फितरत से करीब रहते हुए 6 साल की उम्र में अपनी माँ के पास वापस भेजा गया। बीबी आमना अपने बच्चे को लेकर अपने शौहर की कब्र को देखने गई। यसरब में थी कब्र। वापसी पे अव्वा के मुकाम पर इंतकाल हो गया, और उसके बाद फिर वो बच्चा माँ की मोहब्बत से भी महरूम हो गया, क्योंकि माँ का इंतकाल हो चुका है। अब बच्चा दादा के पास आ गया। तकरीबन 2 साल तक दादा को मोहब्बत करने का और मोहब्बत दिखलाने का मौका मिला, और उसके बाद दादा भी दुनिया से चले गए। और जाते जाते बेटे अबू तालिब को कह के कि इस बच्चे की हिफाजत करना, ये बड़ा ख़ास बच्चा है। किसी को भी अब्दुल मुत्तलिब के पास आने की जरूरत नहीं होती थी जब वो हरम में बैठ के लोगों के मुकदमात का फैसला करते और अपनी सरदारी की जिम्मेदारियां निभाते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा प्यारा बच्चा था कि जिनको आने की इजाज़त थी और वो आके उनकी गोद में बैठते और लोग कहते क्या काबिले रश्क बच्चा। ये वो बच्चा था कि बचपन में ही जिसकी नबूवत की निशानियाँ नजर आनी शुरू हो चुकी थी। 8 साल से कुछ उम्र ऊपर हुई, चचा के साथ किसी तजारती सफ़र में मुल्क शाम गए, कुछ और लोग भी साथ थे, और वहाँ बहीरा राहिब मिला। उसने उस बच्चे में कुछ ऐसी निशानियाँ देखी कि चचा को मशवरा दिया कि वापस चले जाओ। मैंने देखा कि जब ये बच्चा यहाँ आया तो दरख्त और पहाड़ झुक कर इसको सलाम कर रहे थे। कहा हो ना हो ये वही बच्चा है जिसके वादे तौरात और इंजील में थे। उसको मुल्क शाम न लाओ, ले जाओ, इसकी जान को खतरा है, वापस भेज दो। वहाँ से अल्लाह के नबी वापस भेज दिए गए। कई और वाक़यात आपके बचपन में हुए, इस पे हम अलग से बात कर चुके हैं। डिटेल सुननी हो इन सारी बातों की तो इंशाल्लाह आपको एंड पे सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स इस टॉपिक के बताए जा सकते हैं ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। किस्सा मुख्तसर कि ये बच्चा जब 25 साल की उम्र के करीब पहुंचा तो अल्लाह ताला ने मोहब्बत करने वालों में इजाफा फरमाया, और खतीजा नाम की एक औरत इनकी बीवी बनकर इनकी दुनिया में आ गई। इन्होंने भी इनको खूब चाहा, अपना सब कुछ इनके पास रख दिया। खूब मेरी दौलत से अल्लाह के रास्ते के जो काम करना चाहें करें। 40 साल की उम्र से पहले पहले मक्का वालों के दिल नबी सल्लम की मोहब्बत से चूर हो चुके थे। आपका किरदार, आपका इखलाक, इसकी गवाहियां लोग सादिक और अमीन के लकब से देते थे। सब आपसे प्यार करते थे, सबको आपसे मोहब्बत थी। बाकी रिश्तेदार तो एक एक करके छुटते गए। एक चचा था, अबू लहब उसका नाम था, शदीद मोहब्बत करता वो अल्लाह के नबी से। नबी का नाम तो मैंने इज्जत से लिया ना, असल में वो मोहब्बत करता था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई के बेटे की निस्बत से, भतीजे की निस्बत से। जब बच्चा पैदा हुआ उसकी खबर सुनी तो लौंडी को आज़ाद कर दिया। 40 साल की उम्र से पहले तक इस मोहब्बत में बहुत जोश था। फिर एक दिन यही सहरा का फूल जो अब अपनी जवानी पे पहुंच चुका था, जिसने फितरत से भी रहनुमाई पा ली थी, 3 साल गारे हिरा में रहकर तन्हाई में अल्लाह ताला के साथ अपने रूहानी दर्जे भी बुलंद किए, ताल्लुक़ पैदा किया। कुछ नहीं जानता कल मेरे साथ क्या होगा, कि एक दिन अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में आते हैं और हुक्म देते हैं, इकरा पढ़ो। सूरत अलक की इब्तदाई 5 आयतें नाजिल होती हैं और उन आयात में उनको हुक्म मिलता है इस बात का कि आप अल्लाह सुबहान ताला के नाम से पढ़िए। बड़ा अनयूजल किस्म का वाक्या था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप रहे थे उस वक़्त, तो कैफियत जो थी सो थी। घर आए तो बीवी से कहा, ज़म्मेलोनी ज़म्मेलोनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। खैर, हज़रत खदीजा ने आपको तसल्ली दी। अगले दिन आपको अपने चचाजाद भाई के पास ले गई कि जो नसरानी बन चुके थे। कहा कि इनका हाल क्या है, इनको ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो बहुत फिक्र है। और अल्लाह के नबी कह रहे थे, इन्नी खशीत वला नफसी, मुझे अपनी जान का ख़तरा है, मुझे फिक्र है अपनी जान की। हम में से कोई भी हो तो उसको शायद ऐसा ही लगे। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कज़न ने एक ऐसी ख़बर बताई, वरका बिन नौफल इनका नाम था, उम्र ज़्यादा थी इनकी, कहने लगे कि आपके अंदर वो सारी निशानियाँ जो नबूवत की होती हैं, और मुबारक हो खदीजा के अल्लाह ने आपको एक नबी की बीवी बनाया, और काश मैं उस वक्त हूँ जब लोग आपको छोड़ देंगे और कौम आपको यहाँ से निकाल देगी। मैं जिंदा हुआ तो आपकी मदद करूँगा। कहा, मैं, मुझे लोग झुटलाएंगे? कहाँ, जिसने हक बात की लोगों ने उस पर नाम ज़रूर रखे। क्योंकि याद रखिए कि सोसाइटी में एक दीन चल रहा होता है बाप दादा के नाम पे, ख़ानदानी रिवायात का, सुनी सुनाई बातें। कोई नहीं पूछता ये काम क्यों करूं? इसलिए करूं कि मेरी नानी करती थी, दादी को करते देखा, ये मेरी सास अम्मा मरहूमा ये काम करती थी, मैं भी करूंगी। बस दफ़ा असल दीन के ऊपर इतनी ज़्यादा गर्द पड़ चुकी होती है कि लोग इस किस्म का दीन सामने ले आते हैं। छोटा सा असूल समझ लीजिएगा यहाँ कि जब भी अल्लाह का नबी दुनिया में आता है, कोई भी, चाहे वो हज़रत नूह हो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, बड़ा साफ़ सुथरा आसान दीन, काबिल अमल, फितरत से करीब दीन पेश करते हैं। शुरू में लोग उसको मानते हैं और सिद्दीकियत के दर्जे पे पहुंच जाते हैं और उमर फारूक बन जाते हैं और उस्मान और अली बन जाते हैं। वक्त के साथ चूँकि सभी उस पर अमल कर रहे होते हैं, तो नयापन करने के लिए जिद्दत के नाम पर कुछ लोग उस दिन में कोई ऐसी चीज़ डालते हैं, ये जैसे हम पाकिस्तानी लोग खाना खाते हुए कोई ना कोई मर्च मसाला डाल देते हैं। सादा पुलाव खा लेते हैं लेकिन फिर कुछ दिन के बाद कहते हैं, नहीं कुछ तेज़ हो, फिर उसमें मसाला डालते हैं, कभी बिरयानी का मसाला और कभी दूसरा। एक वक्त आता है कि असल चावलों का टेस्ट दब जाता है और खाने का टेस्ट मसालों में ढल चुका होता है। दुनिया के मामले में तो ये ठीक है कि कुछ सालों के बाद आप फैशन चेंज कर लें, कपड़ों का चेंज कर लें, खाने का स्टाइल, लेकिन दीन के नाम पर ये नहीं हो सकता। क्योंकि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन पूरा हो गया आज के दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी का जो तोहफ़ा मिला था शुरू में, आपकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में सूरत मायदा की इब्तदाई आयात में से अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम के साथ इस तोहफे की तकमील हो गई। और बाज़ रिवायात में आता है कि सूरत बकरा की वो आयात जो सूद की यानी रिबा की आयात के फौरन बाद हैं, वत्तकू यौमन, उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ पेश किए जाओगे और वहाँ तुम्हें पता लगेगा कि तुमने ज़िंदगी भर क्या किया। ये तरतीब के नाते से कुछ आखिरी आयात में से आयत आती है, तो उसके बाद फिर दीन में किसी किस्म के इजाफे की गुंजाइश नहीं होती। अब जो भी कोई काम करेगा उसके बाप दादा के नाम पर तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी बात नहीं मिलती। बिल्कुल इसी बात को दूर करने के लिए नबी सल्लम की ज़िंदगी से हमें कई बातें मिलती हैं। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, ये सूरत बकरा की आयत 281 है, वत्तकू यौमन तुरजाउन फीही इलल्लाह, और डर जाओ उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ पेश किए जाओगे। थुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर उस दिन हर नफ्स को पूरे का पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म ना होगा। तो जब दीन के नाम पे लोग कुछ ऐसे काम करने लग जाएं जो कि अल्लाह के नबी ने नहीं किए, तो इससे दीन पे बिगाड़ आता है। बहरहाल, हम बात कर रहे थे अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के अंदर की कुछ झलकियों को देखा। आप नबूवत के मनसब पे फायज़ हो गए, शुरू में वही थोड़ी रही, होते होते फिर वही का सिलसिला बढ़ता गया। बारिश के कतरों की तरह कुरान की आयतें नाजिल होती रहीं। शुरू के साल बहुत मुश्किल के थे। आपने 4 नबवी में अपने रिश्तेदारों को दावत दी, खुलेआम दावत का सिलसिला शुरू हुआ। 5 नबवी में हालात इतने ख़राब हुए कि कुछ लोग हबशा हिजरत कर गए। सन 6 नबवी ऐसा सख्त था कि आपके ऊपर कातिलाना हमले होने लगे, लोग निगोसिएशन पे आ गए। और 7 नबवी में आपके कत्ल की ऐसी घनौनी साजिश बनी की गई कि सब आपको मारना ही चाहते हैं। इंतहाई स्ट्रेस के दिन थे। मक्की दौर की डिटेल सुनना चाहे तो आप सुन सकते हैं, वो यतीम जिसने दुनिया को हिला दिया, इसमें हम उसकी डिटेल्स कर चुके हैं, एक स्ट्रेच में आप देख सकते हैं। सन 1090 में आपको खूब गम पहुँचे, चचा भी गए और बीवी खदीजा भी गई। वहाँ से दिलगीर थे, ताइफ की तरफ गए तो पत्थरों की बारिश आप पर हुई। दीन में इतना सताए गए कि अल्लाह को आपने पुकार लिया, अल्लाह मिलई कशकुदा फकुवती वकिल्लत हीलति वहवानी यलन्नास। 11 नबी में उम्मीद की पहली किरण फूटी और आप हज के मौके पर मीना में जब दीन की दावत दे रहे थे तो मदीना से आने वाले 6 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। सन 12 से 13 नबी में आपको मेराज करवाई गई जिसमें आपको अम्बिया कराम से बुलाया गया और कुछ तोहफे दिए गए। 12 नबी में एक एग्रीमेंट हुआ मदीना से आने वालों के साथ कि ठीक है, आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो अब आप दीन पर अमल भी करेंगे। 13 नबी जब आया तो उस मौके पे तो हालात इतने संगीन हो चुके थे कि लोगों ने अल्लाह के नबी को इज्तमाही तौर पे कत्ल करने की साजिश कर ली, तो अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दे दिया। ये थे वो हालात जिसमें आप मक्की दौर में आजमाए गए। मैं सिर्फ इन बातों को बीच में रखते हुए खुद से भी और सुनने वाले सब साथियों से चंद बातें पूछना चाहती हूँ। हम अपने नबी को कितना जानते हैं? हमारा अपने नबी के साथ कितना ताल्लुक है? क्या मैंने अल्लाह के नबी सल्लम की पूरी ज़िंदगी को एक एक साल और महीने के नाते से जाना? क्या मैं उन मुश्किलात पे कभी रोई जो आपको मक्की दौर में हुई? क्या मेरे आंसू गिरे? क्या मेरी आंखें तर हुई उन आजमाइशों और तकलीफ़ों को सोचकर जो मेरे नबी को इस दीन के रास्ते में पहुँची? क्या मेरे अंदर भी इतना सब्र हो सकता था अगर मैं उस दौर में मौजूद होती? क्या अल्लाह के नबी के उस दौर को, जब पता भी नहीं था कि कल ये शख्स कितना बड़ा इंसान बनने वाला है, कल ये दीन कैसे दुनिया में फैलने वाला है, क्या मैं उस वक़्त भी इस नबी पर ईमान ले आती? बहुत आसान है अल्लाह के नबी के बारे में बात करना, सिर्फ बात करने की हद तक। बहुत मुश्किल है इसके अमली तकाजे पूरे करना, कुर्बानियाँ देना। अल्लाह के नबी की नात पढ़ना बहुत आसान है, हालांकि एक हदीस में आता है कि नबी की तारीफ़ करना तलवार पे चलने के बराबर है। यानी मदह करो, तारीफ करो, नात पढ़ो, लेकिन उसमें जो बात कह रहे हो उसको सोच के बोलो, कहीं शिरक ना हो जाए, कहीं गलूफ ना हो जाए। बहुत खूबसूरत बात है कि अल्लाह के नबी की इंसान तारीफ करे, लेकिन अमली कुर्बानियाँ कितने लोग देना चाहते हैं? हमारी भी ज़िंदगी में ये मक्की दौर आते हैं, और ये कब आते हैं? जब हम अल्लाह के दीन की तरफ शौरी तौर पर आते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आज के दौर में ये कब आता है? जब हम कुरान पढ़ते हैं, फिर हमें सच्चा दीन समझ आता है। अच्छा, ये है वो प्यारा तोहफा जो आपने दिया, ये हैं वो मक्की सूरतें जो आप पर इन 13 सालों में नाजिल हुई। मक्की दौर के एंड पे हम खुद से पूछ लें, क्या मुझे कुरान पाक की सारी मक्की सूरतों के नाम आते हैं? क्या मुझे मक्की दौर में नाजिल शुदा कुरान पाक का मजमून पता? किन मौजूआत पे वहाँ बात हुई? कुरान पाक की सबसे बड़ी मक्की सूरत कौन सी है? कुरान पाक की सबसे छोटी मक्की सूरत कौन सी है? मक्की सूरतों की क्या पहचानें? जितने सवाल खुद से करना चाहें कर लें, और ये सारे सवाल भी आप एंड पे करिएगा मदनी दौर के एंड पे। क्या हमें अल्लाह के नबी से एक नबी वाला प्यार है या हीरो वाला प्यार है? आपकी ज़िंदगी का जो मिशन था, क्या वही हमारा मिशन है?